ब्रह्म ने आरंभ किया है कल हमने मैंने पिछली बार आया लखा इसका रिपीटेशन करके अभी अन्य शक्ति तक हमने पहुंचे
बताइए प्रकार की
निश्चित है और जिसमें अनिश्चितता तक अभी कुछ करना पुष्ट बताया अन्यथ में नवापराध सेवापराध है बहुत तरह के अनर्थ हमने कहा इसीलिए हम इन्हें भजन के नहीं करता रुचि नहीं मिलती तेज नहीं मिलता यदि 3 लाख हरिनाम कर रहा हो धन पढ़ रहा हो परिपत्र रहा हो और चित्त द्रवित नहीं हो जाता रोमांचित नहीं हो जाता तो समझो कि कहीं मेरे साधन भजन नहीं भगवान का नाम इतना नहीं जितना शक्तिशाली है प्रभावशाली है आज एक और अतिदुष्ट का नाम निकले चित्त को द्रवित कर देगा आंखों से आंसू की अग्रिम धारा बहने लग जाए शरीर का होश नहीं आए तो हम लोग इतना करते हैं होता है तो सोचना चाहिए फल देकर के हम किसी कर्म का लग लेते हैं देखते कि फल तो हो नहीं रहा इसलिए प्रयास है इसलिए हम लोगों को चाहिए वो उपाय करना चाहिए जिससे कि ये चीजें हट और भगवान के नाम का श्रवण का चिंतन का ये प्रभाव फल इन्हें पहले ये हम लोगों को समझो ये जरूर है मैं तो हो नहीं रहा ये तो किसी के का लक्ष्य है इसलिए पहले साधु निंदा इसके बाद में गुरु गया इन दोनों के संबंध में हमने बताया बहुत तरह तरह के दान दे करके दर्श बल्कि निंदा हमने की है उनके प्रति अपराध हुआ है और अब सहन नहीं करेंगे बस काम खत्म नहीं हुआ उसे अपराध क्षमा कराना होगा अब से नहीं करेंगे ठीक है जाकर के जेल वहां पर जज को कह दिया मैंने इनका मर्डर किया है किंतु अब से नहीं करूंगा छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा कानून उसको छोड़ने नहीं देगा यदि ये छोड़ता है तो उसी के ऊपर में फिर ब्लेम आएगा इसलिए यही नहीं है आज से मैं अपराध नहीं जिसके प्रति अपराध हुआ है गुरु जी के पास वैष्णव के पास में क्षमा और हमने ये भी कहा कभी कभी दुर्भाग्यवशतः और अज्ञानवशतः वैष्णव में दोषारोप हम करते हैं दोष नहीं रहने पर जिस प्रकार से हमने लेकर के बतलाया कि जिन्हें चित्रकेतु महाराज जी के वचनों में दोष का आरोप किया वो शंकर जी की प्रशंसा कर रहे थे इसी तरह से हम कनिष्ठ अधिकारी लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, ज्ञान में अनजान में इनकी हम निंदा अवज्ञा इत्यादि करते हैं। इसलिए आज से मैं नहीं करूंगा ये कहना नहीं, निरंतर हरिनाम करना पड़ेगा, जिनके चरणी अपराध में उसे क्षमा मांगो। अरे वो तो बड़े छोटी स्वभाव के हैं, वो मानते नहीं है, तो वो वैष्णव कैसे हैं, तुम्हारा अपराधी नहीं ऐसा मत सोचो। भक्ति में कुछ विचार है, मैं आगे बतलाऊंगा इस विषय। तीसरा हमने बतलाया, लिखा है तीसरा नमापराध, शिव में और विष्णु में भेद मत देखो। कोई शिव उपासक होकर के कहता है कि मैं तो शिव को उपासक हूं, विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे, और कोई वैष्णव लोग हैं वो कहता है कि शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे, सब से कोई संबंध नहीं। जो ऐसा करता है उसका अनुसंग नहीं करेंगे, शिव नाम हम सुनना नहीं चाहते। इस तरह से हम जानने अनजानने कुछ अपराध संकट जी के प्रति काम देते हैं,
इस विषय में भी सावधान रहना चाहिए।
इसको वैष्णव के निकट में जी तब करते हैं, जानने से तब ये अपराध नहीं बने तो होगा। अभी पहले शंकर जी की राम के साथ में शंकर जी की आराधना करते, फिर जब आया तो कुछ धारणा बदली, हमने सोचा कि रामी की उपासना करने के लिए संकट की नहीं, फिर वैष्णव के संग में आया, गुरु जी इत्यादि के संग में नहीं, शिव को यथाजत सम्मान देते हुए भगवान करने। किसी की प्रणय में भी लिखा है, शंकर का देवी और मेरा भक्ति यह कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकेगा। तो ये कैसे होगा? इसलिए कभी कभी वैष्णव शंकर जी को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, अतः उसका विचार सुन करके समझ करके उसका एहसास से जरा दूर रहे। शिव तत्व और कहीं कहा गया, जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवो दय समर्थेन विच्छेद सपाषंडित। जो लोग नारायण जो सबसे आदि देव है सबके मूल, उनके बराबर ब्रह्मा और विष्णु को मानता है तो वो पाषंडित है, उसका मुख दर्शन मत करो कहा गया। और फिर यहां कह रहे हैं शिव और विष्णु में कोई अंतर मत देखो, मैं कमजोर हो जाऊंगी, अपराध हो जाएगा। तो ये तो दो तरह है, क्या करना चाहिए? साधारण कनिष्ठ वैष्णव लोग या मध्यम अधिकारी के प्रथम मध्यम के कनिष्ठ हैं या मध्यम के मध्यम हैं, वो समझ नहीं पाते ये क्या करना चाहिए, वो निंदा कर रहे। शिव के मंदिर में नहीं जाते, शिव चतुर्दशी पालन नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे, हम दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आज विचार किया विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए। अर्थात में जनता का या सब लोगों का साधारण में शंकर जी के प्रति भी है, राम और कृष्ण के प्रति भी है। ऐसे हम लोगों के रक्त में वो पहले से ही चला रहा है। यदि कोई कोई कहता है कि समुद्र के मंदिर में मत जाओ, इस हृदय में बगावत होती है, ये भी ठीक नहीं जाना,
ये परंपराएं ठीक नहीं है।
तो जो नौसिखिए होते हैं ना, वो कहता है कि सीटू कुछ नहीं है, काली और दुर्गा ये सब कुछ नहीं है, बेकार ऐसा मत कहो। ये भगवान के ही शक्ति दी हुई ये सब चीजें, आधिकारिक देवता है, उनका जैसा जैसा सम्मान होना चाहिए। एक चीटी में भी भगवान का भी स्थान जा करके उसको सम्मान देना चाहिए जो भजन करना चाहिए। शंकर जी में और कृष्ण में या नारायण तत्व में भगवत तत्व में ये दोनों की दृष्टि से एक अभिन्न तत्व है, दो तत्व नहीं है। इस चीज को जो ये था समझो कि चेतन जो वस्तु है,
चित वस्तु है, ये दो प्रकार की होती है। चिन्मय वस्तु दो प्रकार,
एक होती है स्वतंत्र चेतन
और एक होता है अस्वतंत्र चेतन।
हमारे अंदर में जो जीव है ये अस्वतंत्र चेतन है और ये माया के द्वारा आच्छादित है। माया के अनुसार में हम काम कर अपनी इच्छा अनुसार करने पर भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अस्वतंत्र हैं, अविद्ध हैं। मुक्त होने पर भी भगवान के स्वतंत्र रहेंगे, इसलिए किसी भी स्थिति में ये तत्व स्वतंत्र रहेगा। और स्वतंत्र चेतन है वो कौन है? नारायण है, कृष्ण है, मूल सत्य है, वो कृष्ण है। इन्हीं के अंश नारायण विष्णु इत्यादि सभी ये स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र चेतन। अब ये स्वतंत्र से भी दो प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसलिए सुनेंगे तब समझा साधारण नहीं, आज कुछ थोड़ा सा आगे अग्रसर है वो समझेंगे। तो कहते हैं एक माया के स्पर्श रहित और दूसरे हैं माया स्पर्श युक्त। नारायण इत्यादि में माया से कोई भी संबंध नहीं है। ये जगत कृष्ण, राम, नृसिंह, कल्कि, वामन जितने भी भगवान के स्वांश अवतार हैं उनसे माया का कोई भी स्पर्श नहीं है, ये विशुद्ध तत्व है। किंतु माया का स्पर्श जिनसे हो जाता है जिस ईश्वर का, माया में बद्ध नहीं होते। दो प्रकार का है, एक कपड़े को से ओढ़ करके अपने को ढक लेना है, एक बार कपड़े से अपने को ढक लिया। और एक होता है एक कपड़े को किसी रंग में रंग डालो, ये तो अंतर समझ में आ रहा है। कपड़े को रंग में तो रंग के साथ में गया, किंतु जेरू रंग में हम जो रंगते हैं इसको साबुन दे करके अच्छी तरह से दे करके देने से इसको सफेद हो जाता है, किंतु मिल गया। कपड़ा उससे अलग है, कपड़े का रंग लगा और मन होता है कि वो कपड़े के रग रग में मिल गया, तो कपड़े से में वो मैंने मिला, उसको साबुन से इत्यादि दूर कर दिया जा सकता है ना? और एक होता है अपनी लीला के लिए जगत में अवतरित होकर के और मनुष्योचित जो लीला हैं प्राकृत या नर्वत लीला जो करते हैं तो माया से उनका संपर्क में कभी कभी माइक भाव से तो ढक लेते हैं, कैसे जोग माया के द्वारा, क्योंकि साधारण आदमी नहीं समझते, वो कृष्ण इत्यादि है। और शंकर ऐसा तत्व है कि है तो स्वतंत्र किंतु माया स्पर्श से युक्त है, कपड़े से जैसे रंग देते हैं ऐसे तामसिक गुण से रंगे हुए हैं, किंतु उनसे उनका संपर्क नहीं है। जहां जरूरत काम खत्म हो गया और जो भी अवश्य खत्म हो गया माया से संपर्क हो गया। एक हद ये है लाख होता ही लाख को पिघला दो और उसके अंदर में आ दो तो अखिल वो सूख गया। अब उस धुले तो धुलाई करो तो लाख साबुन दो नहीं छूटेगा। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, जीव में कभी कभी भगवान की शक्ति का होता है, उसको आवेश आ जाते हैं, जैसे व्यास, पृथ्वी, ये सब कपिल देव जी, ये जीव तत्व में भगवान का आवेश है, वो सांस नहीं है। और जगत का काम करा लेते हैं परशुराम जी जैसे भगवान के अवतारों में एक कहे जाते हैं, किंतु वो सांस नहीं है, दिव्य मनुष्य उनमें भगवान शक्ति प्रवेश करा करके जगत का काम करा लेते हैं। रामचंद्र जी ने उनसे वो छीन लिया, धनुष यज्ञ में धनुष्यज मैंने नवम्बर में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आए धनुष को आए तो उसमें परशुराम जी आए, एक ही बार पृथ्वी का संहार किया और अत्याचार को और ये सब चीजों को पापों को जगत से दूर करने की चेष्टा, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं था, दूसरों के लिए संभव है। किंतु भगवान की शक्ति में उन्हें प्रवेश करके ये काम कराया
है जी,
है जीव तत्व। और जो ही रामचंद्र जी और उनका साक्षात्कार हुआ, लक्ष्मण जी ने क्रोध का उद्रेक उनमें कराया और जितना क्रोध होता गया उनका वो अवतार का जो भगवान का जो शक्ति थी राम में चलती गई, अंत में सब चली गई और ये केवल ऋषि हो गए। इसलिए ये कैसा ये जीव है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण और राम नहीं है, किंतु कल्कि जी हैं, बामन जी हैं, कच्छप अवतार हैं, नारायण इत्यादि हैं, वो सभी जो शंकर जी ऐसे नहीं हैं। शंकर जी कैसे हैं? माया से स्पर्श किया हुआ, स्पर्श करके जगत का में तामसी गुण के द्वारा जगत का ध्वंस करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि कराते हैं, ये सब करते हैं। इसलिए किंतु जब वो कर रहे हैं तामसी गुण को लिए हैं, तामसी गुण छोड़ देंगे वो सदाशिव होकर के विष्णु हो। इसलिए शंकर ने और राम ने, शंकर जी ने और उन्होंने अंतर है, तत्वता एक है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है जैसे दूध है, दूध में दही डाल करके या कोई खटाई डाल दो तो वो जम जाएगा, किंतु जमने पर भी वो बदल तो गया रूप, किंतु तब तो उसमें जो घी है जो दूध में था दही में नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए दही भी दूध ही है, किंतु दही दूध नहीं होगी, जो तामसिक रूप से जगत का संहार इत्यादि करते हैं उस रूप में भगवत तत्व से कुछ थोड़े से अलग से दिखते हैं, किंतु तत्वतः एक है, दही और दूध तत्वतः एक। उसी प्रकार से शंकर जी हरि और हर एक तत्व है, ब्रह्मा जी का यह नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है और उसमें भगवान प्रवेश करके उसे जगत की बना देते हैं। ब्रह्मा जी कितने जन्मों में, 100 जन्मों में वैसा राज्य करें, शिवत्व लाभ करें। इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ शंकर है। यहां पर एक प्रश्न उठता है, तामसिक गुण से राजसिक गुण श्रेष्ठ होता है, विरक्त मत होंगे तो ऐसा सुनेंगे ये तत्व काम करेंगे, रुचि इसमें नहीं लगेगी, ये तत्व है ना, किंतु थोड़ा सा सुनिए, मैं रुचिकर बना करके कह रहा हूं, सत रज और तम है, इसमें तम से श्रेष्ठ है रज, रज से श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है, तामसी गुण के अधिष्ठात्री देवता है और राजसी के हैं ब्रह्मा जी और विष्णु है सत्य, तो सत्य दोनों से श्रेष्ठ है, ये बात तो ठीक है, किंतु शंकर जी तामसी गुण के अधिष्ठात्री देवदेव करके भी ब्रह्मा जो राजसिक है उनसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, कैसे हो गए? इसको इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने बतलाया, एक लकड़ी है, एक धुआं है और एक ज्वलंत अग्नि है ना? अग्नि ज्वलंत है, ये सत्व गुण का परिचय है, ये विष्णु तत्व है, उसमें धुआं नहीं है, और जब केवल धुआं ही निकल रहा हो, केवल धुआं निकल रहा हो तो उसे आंखें बंद हो जाएगी, नाती बंद हो सकती है, शरीर और कपड़े को भी धुआं काला कर देगा और उसमें से अग्नि को देखने नहीं देगा, इतना धुआं ही धुआं। एक लकड़ी को भिजा करके और उसको जलाओ तो आग जलेगी नहीं, केवल धुआं धुआं दिखेगा, और लकड़ी जो है
उसमें आग है ना? लकड़ी में आग है, धुआं भी नहीं है और जल भी नहीं रही है, किंतु आग उसमें है, ज्यादा घर्षण कर तो आग निकल जाए। इसी प्रकार से शंकर जी तम आखा तो लकड़ी स्थानीय है, वो आंख उससे दर्द नहीं होता, आंखों में ज्वाला नहीं होता, आग नहीं दिखती है और वो धुएं से भरा पड़ा है, इसलिए धुएं की अपेक्षा ये लकड़ी को श्रेष्ठ माना गया। इसमें जब चाहो तब उसमें से आग पैदा कर दो, इसलिए संकट तत्व को विचार की दृष्टि से श्रेष्ठ बतलाया है। इसलिए ब्रह्मा की अपेक्षा शंकर जी श्रेष्ठ हैं और वो भगवान के साथ अभिन्न हैं, इसलिए उनकी निंदा नहीं करो। मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं इसलिए शंकर जी नहीं करूंगा, शंकर जी को कोई सम्मान नहीं दूंगा, ये गलत है। और कहता हूं कि गुरु के रूप में मैं तो प्रणाम तो करो, गुरु के रूप में करो, शिक्षक के रूप में करो, क्योंकि उनकी जितनी भी भागवत की शिक्षा है सब शंकर जी के माध्यम से आई है। इसलिए वैश्वानंद यथा सम्मान, इसलिए शंकर जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तब आप तो इतना बतला रहे हैं और भागवत में या कहीं लिखा गया है जस्तु नारायण आदि देवम ब्रह्म रुद्रादि देव समत्ते न विच्छेव सपाषंडी भवे तुम, आप शंकर जी को उनसे अभिन्न कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि यदि बराबर मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो अपराध हो जाएगा, पाषंडी हो जाएगा, तो इसके लिए कहते हैं जरा समझो। शिव तत्व दो प्रकार के हैं, जिस कल्प में वैसे शंकर जी नहीं आते ऐसा बहुत कम चांस होता है, जिस समय में किसी कारण से वो नहीं आते तब जीव तत्व में कुछ अपनी शक्ति को प्रकाश करके विष्णु शिव तत्व का काम कराते हैं, ये जीव तत्व होते हैं। इस जीव को और ब्रह्मा जी को कृष्ण के बराबर राम नारायण के बराबर मत अभिन्न मत समझो, किंतु जो संकट तत्व है यथार्थ जो जिसको सदाशिव कहा जाता है वो तत्वतः एक है ऐसा, और उनके प्रति अनादर मत करो।
ये कभी कभी होता है,
ये कभी कभी
जब शिव जी स्वयं कृष्ण विष्णु न आके किसी जीव में अपना शक्ता भेज सकता
है, उसमें उस जीव को और कृष्ण को बराबर समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इतना तत्व हम कैसे जानेंगे साधारण आदमी, अरे भक्ति में प्रवेश करने के लिए चेष्टा होने पर हम अभी कंप्यूटर से क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या आश्चर्य बातें कर रहे हैं और इतनी थोड़ी सी बात नहीं समझ में आएगी। भजन में प्रवेश करने पर कनिष्ठ अधिकारी में जब से हम छोड़ करके आगे बढ़ने लगे, ये चीजें यदि हमारे समझ में आ सकती है बिना पढ़े लिखे आदमी, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं जरूरी हो जाएगा। इसलिए संतों के पास में जाने से ये सब चीजें समझ में आती है। अंततः निंदा मत करो, यदि सम्मान नहीं दे सकते तो निंदा मत करो, यदि हो गया है ऐसा तो ये कैसे हो गया, हमने तो किया नहीं इस जन्म में, दूसरे जन्म में हो गया होगा, अपराध तो जरूर है, इसलिए ऐसा करो निरंतर हरिनाम करो और फिर से ऐसा मत करो। हरिनाम सब में करना पड़ेगा, जितने प्रकार के अपराध हैं उनमें हरिनाम में मुख्य है, वो हरिनाम करते चलो और फिर ऐसा ना करो। एक और बात चौथी चीज, श्रुतियों की निंदा मत करो, कनिष्ठ अधिकारी ऐसा करता है। ये तत्व को
इसमें एक प्रश्न आ रहा है,
क्या हुँ?
ब्रह्मा को भगवान ने अपना एक शक्ति दी तो वो उसको सत्ता वेश अवतार मानेंगे क्या?
नहीं, उसको गुणा अवतार करेंगे,
गुणावतार
ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए गुणा अवतार।
नहीं, परशुराम को एक शक्ति दी
और वो सत्ता वेश,
इन दोनों में कैसे वो समझेंगे?
इन्होंने दिया है
गुणों का संचार किया,
गुणों का संचार किया तामसी गुण का, और उनमें बल शक्ति दिया, शक्ति दी, जैसे नारद जी ने भक्ति शक्ति दी, व्यास ने भक्ति शक्ति, कपिल में ज्ञान शक्ति दी, पृथ्वी में पालन की शक्ति दी, ऐसे ऐसे शक्ति दिया
करते। इन सत्ता विषय अवतार और नारायण को भी हम एक
नहीं कहेंगे,
कई कई जगह पशुराम को
आवास नहीं जानने से ऐसा, अब एक दूसरी चीज, इसमें भी हमको सावधान रहना चाहिए, क्या श्रुतियों के को निंदा मत करो। श्रुति माने वेद, गीता, भागवत, रामायण, पुराण, ये सब। निंदा कैसे होती है? एक जगह लिखा है कर्म करो कर्म करो, और एक जगह कहेंगे कर्म से कभी भी भक्ति नहीं होगी, कर्म मत करो, ऐसे चला दे।
मोदी शिवजी को तांत्रिक को क्यों दिया? शिवजी को तांत्रिक को क्यों दिया?
उसने तमोगुण तांत्रिक दिया नहीं,
नो नहीं होगा। नहीं
अरे भाई बहुत जल्दी
मत, बच्चा वो नहीं है, रेगुलेटर नहीं,
बहुत तेज मत कर भाई,
नहीं है नहीं
इतना ही।
ये तो हमारा सब ये गड़बड़ हो जाएगा।
इसकी क्या
स्थिति? एक सांप निकला न, मैंने कहा इससे मारू, हाथ से मारेगी क्या करेगी? एक लठिया ले लो और लठिया से सांप को मार करके लठिया भी फेंक दो न, एक कांटा बड़ा है पैर में तो वो कैसे निकलेगा? एक कांटे से ही निकलेगा, सुई भी कांटा है, निकाल करके तुमको सुई की भी जरूरत नहीं, कांटे की नहीं, दोनों को फेंक दो। ऐसे शंकर जी जगत की सृष्टि करते हैं तो असुरों का संहार, जीवों का पालन करने के लिए कुछ ऐसे उनको काम करने पड़ते हैं, इसलिए प्रभु ने उनको अच्छे इसको साथ में लेकर के इस काम को करते हैं। एक तरह से अब स्थितियों की निंदा है? उसमें कहीं लिखा है यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्त कर्म बंदन तदर्थम कौम कंते मुक्त संघ समाचार। पहले तो लिखा जो सत्कर्म करो, बिना सत्कर्म किए किसी की चित्त शुद्धि नहीं होगी। माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, पशु पक्षी जितने भी उनके जैसे हैं ये सब का कुछ आदर करो। और फिर कहा भगवत भक्ति के स्टेज में जब ऊपर चला जाता है तो लिखा सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणम ब्रजा। ऐसा क्यों कहा? कहते जो करो करो, यदि तुम ये कहेगा मैं नहीं कर्म करता तो मिथ्याचारी सब उच्यते। क्या है उसको? नहीं नहीं, मिथ्याचारी सब उच्यते, मैं कर्म नहीं करता, ये यदि कोई कहता है मिथ्या है।
यदि हम न वर्तम जाओ समेतन से मम वर्त मन वर्तते मन नहीं 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 ये नहीं
नहीं नहीं ये दूसरा अध्याय था मिथ्याचारी सा उच्चते। ये श्वास लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, इसके बिना कोई जा सकता है, खाना भी कर्म है। अर्जुन कहता है जिस मैं नहीं लड़ाई करूंगा मैं नहीं कर्म करूंगा, यदि ऐसा कहता तो मिथ्याचारी है, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया शास्त्र में विवाह करना चाहिए, शास्त्र में किया गया, भागवत में आया प्रसंग परीक्षित जी को सुखदेव जी का यज्ञ में पशु की हिंसा की जाती है, कहीं कहीं मांस खाने का भी बतलाया गया। किस लिए? इसलिए कहा गया एक व्यक्ति है जब किशोरावस्था में पहुंचा, मां बाल कुछ नहीं देखता, भोगियों का कई घर घर डूल रहा है, उसने कहा कि विवाह करके एक स्त्री के साथ में रहो तुम, इसलिए वही ब्रह्मचर्य है। किस लिए? उसकी व्यभिचारिता को रोकने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई, इसलिए नहीं कि खुला इधर उधर में दौड़ते रहो, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए। यज्ञ में कहीं सुरापान की विधि लिखी गई, इसलिए मद को छुड़ाने के लिए, शराब को छुड़ाने के लिए, जैसे ये विवाह की इसलिए व्यवस्था की गई व्यभिचारी होकर के मत घूमो इधर उधर,
नहीं तो लोगों से झगड़ा होगा, तकरार होगा, मारपीट होगी, तुम मारे जाओगे और इस लोक में परलोक में सब जगह तुम्हारी निंदा होगी। इसलिए एक स्त्री के साथ में, एक पति के साथ में रह करके अपना जीवन का निर्वाह करते चाहिए, ये विधि विधि। इसलिए उच्छृंखल होने से बचाने वाले। दूसरी बात, यदि मांस खाना है तो पहले लोग खाए, तामसिक लोग खाएंगे, जो अत्यंत तो तामसिक व्यक्ति है, पशु के समान है, आप किसको किसको रोकेंगे? आप बाघ को खाने से रोकेंगे? और ऐसे बाघ के स्वभाव के व्यक्ति हम उनको रोकेंगे? यह असंभव। इसलिए वहां पर कहा गया, यदि तुमको खाना आता है तो आप यज्ञ करो, उसमें यज्ञ में एक पशु की हिंसा करके, बकरी इत्यादि की, और सबको खिला करके जो तुम्हारे आदमी है, और तब खाओ। अंकुश लगाया गया, जहां तहां जैसे तैसे काट करके खा रहा है, ऐसा नहीं, यज्ञ करो, यज्ञ में। ऐसे पहले की प्रथा, आजकल की कोई ऐसी नहीं है। ये भी हिंसात्मक चीज है, इसका भी मना किया गया, उनको संयम करने के लिए। इस तरह से संयम करते करते चित्त शुद्धि होगी, इसके बाद में ज्ञान होगा, संतों का संग होगा, फिर भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए सूचियां एक तात्पर्यमय है। गीता का पहला श्लोक, अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय है। भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय, क्या? भगवान की भक्ति करो, बस। इसके लिए कहीं कर्म की व्यवस्था दी गई, कहीं ज्ञान की व्यवस्था दी गई, कहीं तपस्या की व्यवस्था दी गई, कभी ध्यान की व्यवस्था दी गई। इसलिए इसको अलग अलग मत समझो, इसलिए श्रुतियों को मत निंदा करो। वो अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों को संयमित करके आगे बढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं दी गई हैं। नहीं तो कहीं से ये इसमें लिखा है कि कर्म करो, हम इसको नहीं मानते। देवता की उपासना करता है, दुर्गा जी की उपासना करता है, ये भ्रष्ट है, इसका मुख नहीं देखेंगे। तो सूखियों में लिखा, कागज में नहीं लिखा जो दुर्गा देवी की पूजा करो, जगत के लोग पूजा करेंगे कौन सी देवी? जो कृष्ण के साथ में जन्मी है, योग माया। अरे भाई, विंध्याचल वासिनी दुर्गा काली, इनका नाम होगा। जगत के लोग अपनी मनोवांछा को पूर्ण करने उनके लिए पूजा करेंगे। इसमें कहीं विरुद्ध भाव नहीं है। उनको क्रमशः उन्नत करने के लिए करते 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 तो साधुओं का संग होगा, फिर भक्ति में बढ़ जाएगी। इसलिए श्रुतियां का जो तात्पर्य है, समस्त मंत्रों का तात्पर्य भगवान की तरफ में ले जाना है, किसी का कोई विरोधी नहीं है। जो प्रकार से क्लास 1-2 का विरोधी नहीं है, एमए का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार से सब एक लाइन में, एक ही योग, पहले कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, और अंत में ये तीन नई पथ है, एक ही पथ है। पहले योग का नाम भक्ति योग, कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसका भक्ति योग। इसमें सूखियों की निंदा मत। यदि ऐसा तुमने किया है, बहुत से भावावास में कहते हैं शास्त्रों का पत्रकार, तो ये दोनों में सामंजस्य नहीं है, यहां पर एक और दूसरी जगह में विरोध हो रहा है, नहीं तुम नहीं समझेगा अभी। इसलिए निंदा मत करो, उसको समझने की चेष्टा करो। इस तरह से जितने प्रकार के अपराध हैं और सब चीजें हैं, इसका विचार हम लोगों ने किया। जब निष्ठा होगी, जब छोड़ देंगे, पूर्ण रूप में नहीं छूटेगी, कुछ आंशिक रूप में छूटेगा, अभी कुछ कुछ रहेगा, वो भावावस्था तक जाएगा। प्रेम भावना पर आत्यंतिक ये निवृत्ति होगी अपराध और इस सबसे। इसलिए निष्ठा, इसके बाद में निष्ठा का स्थान आता है। निष्ठा मैंने कब समझो, जो निष्ठा हुई कैसे समझेंगे कि हमारी निष्ठा हुई कि नहीं, इसके लिए एक मापदंड दे रहे हैं। ये दूध ठीक है कि पानी है, कि पानी मिलावट है, और कितना पानी मिलावट है, आजकल यंत्र निकले हैं ना, पहले के या अभी भी लोग उसमें हाथ डाल करके अंगुली पर देखते हैं, नख पर देखते हैं कितना अंश पानी है कितना, कहते हैं जैसे अच्छे दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है। मथुरा में प्राय पानी में दूध मिलाते हैं।
मक्खन भी निकाल
लेते हैं। मक्खन भी निकाल लिया, दूध देखने में मिलता।
अच्छा,
तो कहते हैं कि निष्ठा जब होगी उसके लक्षण क्या है, अपराध इत्यादि कुछ दूर हो जाता है। उदाहरण दिया, एक आदमी है उसको 105 डिग्री बुखार है, अपने आप कुछ नहीं खाएगा, रुचि नहीं है, उसको डॉक्टर से दवा लेकर के पथ्य के लिए थोड़ा सा दूध इत्यादि या कुछ ऐसा चीज है उसको दे, रुचि नहीं है न पीने की इच्छा है तो भी दे रहे। क्यों दे रहे हैं? यदि किसी को अपराध है, नाम में रुचि नहीं हो रही, तो क्यों हमें करने की क्या जरूरत है? रुचि से हो तो तब तो ठीक था, ऐसा प्रश्न पूछा। उसके लिए कहते हैं जब बुखार अत्यंत तेज है, किसका बुखार? अपराध होगा, उस समय में हरिनाम में रुचि नहीं होगी, किंतु अपने कर्मों का फल, अपराधों का फल भोगने पर भोगते भोगते जब कुछ पारा उतर जाता है, बुखार की डिग्री कम हो जाती है, उस समय थोड़ी सी भूख लगती है, उसमें भूख लगती है, और फिर थोड़े थोड़े देर के बाद में रुचि आती है कि कभी शरीर बहुत दुर्बल रहता है, और फिर दूध की मात्रा और पौष्टिकारक वस्तुओं की यदि मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे पौष्टिकारक हो, शरीर भी ठीक हो जाता है, बुखार भी संपन्न होती है। तो एक भक्ति की यही स्थिति है। एक आदमी महा अनाचारी है ना, अपराधी है, उसका बुखार का इतना है जैसे नाम नहीं सुनना चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, ठाकुर जी का प्रसाद इधर से उधर करते थे दो उसको दवा दो, नहीं सुनता हरि नाम सुनाओ, जो कोई नहीं सुनना चाहता उस गली से 5-7 आदमी निकल करके मदंग बजाते हुए हरे कृष्ण चलते हुए जाओ, अरे ये बड़े बदमाश है, वो गली से निकलते हैं कहेंगे, किंतु धीरे धीरे ही उस पर ऐसा फल करेगा युद्ध में, अरे भाई आए तो आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, इसलिए बुखार उतरते ही अब दवा काम करेगी, और जो छिड़का रहेगी वो भगवान नाम से भगवत भक्ति से वो पूरा होती चली जाएगी, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और व्यभिचारी आदमी, लंपट आदमी क्यों भगवान का नाम करे, भक्ति करे, ये भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, जो जहां है स्थानीय स्थित है अपने स्थान से भगवान का ये सब करता चले, बुखार धीरे धीरे उतरेगा, कैसे उतरेगा, भोगों से। भगवान ने ऐसा बनाया है कर्म चक्र, एक दिन अनुताप आएगा, एक आदमी महालंपट महाव्यभिचारी, कोई बाधा नहीं पड़ी तो बढ़ता जाता है, और 5-6 आदमी ने कुंवर पकड़ करके अच्छी तरह से घुसे और दे करके खूब अच्छी तरह से उनके छक्के छुड़ा करके मुख रगड़ दिया और उनका कोई अंग काट लिया और थोड़ा सा नशा उतरा, और कहे अब मत करना, काम पकड़ो, ऐसे देते बड़ी भारी प्रश्न, कोर्ट में केस कर दिया, 1000 रुपए का हर्जाना देना पड़ा, इस तरह से वो उतरता है नशा। इसलिए माया ये बड़ी दयालु है, घनी में पीस करके हमारे कर्म फलों से हमको हमारा बुखार उतारती है, इसलिए दया समझो। तो इसलिए जब समझो कि हमारी निष्ठा किस स्थिति, निष्ठा आई कि नहीं, अभी आपकी पहले की तरफ में अभी अनर्थ युक्त हमारा नाम हो रहा है, इसके लिए 5 चीजें हैं। जब हरि नाम करने में, कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में, ये 3 चीजें हैं। क्या क्या? पहला नहीं, पहले कीर्तन, इसके बाद में श्रवण और इसके बाद में स्मरण। हम नाम कीर्तन करने में बड़ा उत्साह लग रहा है, क्योंकि तो जब ही किसी ने हरिकथा ताना सुनना आरंभ किया अच्छा इसको कहते हैं लय। और जब दीक्षा मंत्र वाला कोई नहीं है वहां पर, तो एक आदमी कह रहा है सुन रहा है श्रवण में, और भी पांचों आदमी दस आदमी बैठे हैं, उसमें लय होने में सोने में कुछ लग जाएगी तो अभी वो मानेगी, वो तो लाख मन के पत्थर बन करके आंखों पर चढ़ जाएगी और एकदम सुना। तब समझो जो अभी कुछ कमी है, कीर्तन में उत्साह हो रहा है, स्वर में कुछ कुछ है कभी कभी आती है, और जब गुरु का दिया हुआ मंत्र करने बैठे और ओम या क्लिंग आरंभ किया और साथ ही साथ में हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे नवद्वीप में, ठाकुर जी का पूजा करने के लिए गए, तो पूजा करने में सबसे पहले अंधी कर्जा होता है, गुरु का दिया हुआ जो 10 मंत्र हैं उनको करना पड़ता है ध्यान से, तो ध्यान लगाया और पक्के ध्यान में चले गए। 2 घंटा तक ठाकुर जी का दरवाजा खुला नहीं, ठाकुर जी का दरवाजा किसने नहीं खुल रहा, क्या बात हो गई। तो एक हमारे महाराज जी थे नारसिंह महाराज जी, देखिए क्या हो रहा है, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बात हुई। उन्हें तो जोश करके धक्का दिया, धक्का देखा देखा जैसे वो चुपचाप। कीर्तन में थोड़ा
कम
होता है, उससे अधिक होगा
श्रवण
में, और उससे भी अधिक होगा
स्मरण।
इसको कहते हैं लय। जब ये तीनों में नहीं हो और स्मरण करने में भी एकदम शांत चित्त से कनिष्ठ चित्त से गुरु का मंत्र का जो दिया है ध्यान हो रहा है, बड़ा उत्साह के साथ में मनन हो रहा है, तब तो ये लय नहीं हुआ, अने तो फिर निष्ठा नहीं। अच्छा ये लय नहीं है, आप लोग विचार करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं, मैं समझता कि अधिकांश लोगों को ऐसा होता है, अंततः स्मरण में जरूर हो जाता है, चिंतन में करने में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको उसमें आनंद आता है, उनका सौभाग्य है। एक होता है विक्षेप, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति प्रसाय, और ये 5 चीजें जब हट जाए तब समझो कि अभी निष्ठा ही है, तो अभी पहला बतलाया है लय का, दूसरा विक्षेप। आप स्मरण करेंगे तो तरह तरह की जितनी दुनिया भर की चिंताएं हैं वो आएंगी, दुनिया भर की चिंता मन खाली रहता है, जैसे करके आराम से पलंग पर सोने के लिए वो तरह तरह की चिंता, ऐसा हुआ क्या कहीं ना है, बार बार हटाते हैं कुछ बार, ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कोई नदी में या समुद्र में तालाब में जब आदमी पानी भरता है और कलश उठा लेता है तो वो पानी वहां का जो रिक्त हुआ वो कैसे भरता है, डर लगती है, हर हर करके वहां पर पानी आकर के बराबर हो जाता है, ऐसे चित्त को खाली में देकर के ये सब चीज, ये तरह तरह की बातें जो हमने किया है करेंगे उसका प्लान सब आता है। यहां तक ऐसा आएगा जो आपने अपनी चिंता में कि मनुष्य देखा, एक बंदर देखा, और उस समय में देख रहे हैं क्या, आधा मनुष्य आधा बंदर, बेकार की चीजें सब आती है, इसको कहते हैं देखिए। स्मरण अधिक होगा, श्रवण में कम होगा, और कीर्तन में
और कम
होगा, किंतु ये होगा। तो समझिए जब निष्ठा नहीं आई, जब ये एकदम चली जाएंगी, सब समय जब भगवत चिंतन कर रहे हैं कृष्ण की तो कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं गोपी जन बल्लभ इत्यादि का एकमात्र वही रहे, ये वस्तु में चित्त लग गया, नहीं तो ये विक्षेप हुआ, विक्षेप नहीं होना चाहिए, विक्षेप जब है तो सभी निष्ठा नहीं आई, और एक है अप्रतिपत्ति इच्छा तो है जो नाम करूं, इच्छा करती है जो मैं श्रमण करूं, इच्छा करती है मैं ध्यान करूं, किंतु रुचि भी नहीं लगती, मन ही नहीं लगता। बैठ करके हरि नाम कर रहा था, जब मन नहीं लगा तो फासला टहल नहीं लगा, तो टहल टहल तो देखा जी एक आदमी खड़ा है, भाई यहां पर किस लिए खड़े हो, हरे कृष्णा किस लिए खड़ा है भाई, मन नहीं लगता इधर, तो इसलिए टहलते हैं, टहलने के बाद में बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं इसमें रम जाते हैं, ये क्या हुआ, सामर्थ्य नहीं हुआ, इच्छा होने पर मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि हरिनाम कर रहे हैं और चित्त इधर उधर जा रहा है और देखा है एक लड़का एक टेबल पर ग्लास पानी में रखा था, उसको उलाट दिया और यहां से मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये दोष किसका है, उस बच्चे का दोष है ना हमारा दोष, हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है, देखा जो सोचने ग्लास ऊपर से गिरा दिया, उठ करके माला को रख दिया, थप्पड़ दिया, ये किसका, अब तुम्हारा चित्त शांत है तुम नहीं कर रहा, अब बच्चे पर उस तुम तो दे रहा है, इसलिए हरिनाम यदि एकाग्र में करता है, हरि कथा सुन रहा है, तुमको डांटने का मौका कहां, एक निश्चित चीज से हरिनाम करो, एक निश्चित से श्रवण करो, यहां पर श्रवण कर रहे हैं तो वहां से कुछ आवाज आए, तो अब जो ठीक से नहीं सुन रहा था, अरे भाई देखो तो वो दौड़ करके जाएगा, हरिकथा छोड़ करके जाएगा, उसको मना कर लीजिए, क्यों निश्चय से नहीं सुन रहा, दूसरा जाकर के पीठ पाट दिया उसको, सबका चित्त उधर में आकृष्ट कर दिया, इसलिए ये कषाय करा हरिनाम करते समय में, हरिकथा श्रवण करते समय में और स्मरण करते समय में यदि क्रोध हो, किसी प्रकार की कामना हो, लोभ हो, अभिमान हो, इसको कहते हैं कषाय, कषाय माने काला रंग, खराब रंग, मन को उसमें उस समय भगवान, न तो कीर्तन होता है न स्मरण होता है, यदि कीर्तन कर रहे हो और कोई सांसारिक चीजें याद आ गई और देखा जी वहां पर हानि होगी, कोई हानि कर रहा है, उसमें क्रोध भी हो सकता है, लोभ के वजह से उस कीर्तन को छोड़ करके चले जा सकते हैं। एक हरिनाम संकीर्तन भक्ति कर रहा है, परीक्षित महाराज जी हरि कथा सुन रहे हैं और उस समय राज्य में कोई विप्लव हो गया, परीक्षित महाराज जी उठ करके जाएंगे किन्हें विप्लव को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए, नहीं गया, एकचित्त से बैठे, उसी प्रकार से कीर्तन में, स्मरण में और ये सब में किसी प्रकार का कषाय था तो काम को लोह मत सर्जी इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की स्टेज है, साधारण नहीं है, थोड़ी सी है, अभी अभी आरंभ नहीं भजन हुआ,
अभी
निष्ठा नहीं है,
अभी ऊपर हो गई,
अभी केवल लालसा जगी है, रसा स्वाद ये भी दूर होना चाहिए, रस स्वाद किसको कहते हैं, विषयों का रस का स्वाद ले रहे हैं, क्या हरिनाम कर रहे हैं, किसी ने हमको 10,000 रूपये हमारे सामने लेकर के रख दिए, अब उस इतना आनंद हुआ, खुशी हुई, 10,000 रूपये अभी मिल गए, वाह, उठा करके पॉकेट में रख लिए, हरे कृष्ण कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, रुपये का प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा मिल रही है, कोई चीज ऐसी संसार की कोई चीज मिल गई, इसको कहते हैं रसास्वाद, विश्व में आस्वाद ले रहे हैं और इधर में हरिनाम और हरि कथा और इसमें रुचि करते हैं, इसको कहते हैं रसास्वाद। ये पांचों चीजें दूर होनी है तब निष्ठा आएगी, तब निष्ठा के अनुसार में भजन होगा, ये मापदंड है इसका, कितना हुआ है, 1 घंटा हो गया है, तो निष्ठा तक समझिए, निष्ठा मने निश्चला बुद्धि, प्राण जाय बरु भजन न जाय, ये वहां पर प्राण जाय बरु वचन न जाय, प्राण जाय बरु ऐसी निष्ठा हो जाए। मन नहीं लगा कोई बात नहीं, हम तो करना है, हमारा चित्त इधर उधर जा रहा है कोई बात नहीं, जाए कहां तक जाएगा, हमको तो भजन करना है, हम इतना करके 1,50,000 या जितना हमारा संकल्प है उतना नाम करेंगे, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे देंगे और उनका चिंतन करेंगे, भले ही चित्त नहीं लगता है कोई बात नहीं, हम तो कर रहेंगे, और ये सब चीजें दूर हो गई तब कुछ। अब निष्ठा कैसी है और रुचि कैसी है, इसकी अवस्थाएं हैं हम अब कल द्वारा
हमारे
महाराज, ये आपका सत्संग सुनेंगे तो पांचों चली जाएंगी, आगे रिश्ते को
गड़बड़
निरंतर करना, गुरु वैष्णव का संग, उनका उपदेश श्रवण निरंतर करना, और ये जो प्रतिकूल चीजें हैं उनसे दूर रहे, अनुकूल चीजों के अनुसार नहीं चले, अपने से उन्नत जो वैष्णव है उनका संग हो,